आचार्य शुक्ल लिखते हैं, ऐसे ही समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य के क्षेत्र में उतरे। ये कहानियां हिंदुओं के ही घर की थीं। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने यह दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। सच्ची सेक्युलर मानसिकता यही कार्य करने में चरितार्थ होती है, और यह कार्य अपने ढंग से इन सूफी साधकों ने अपने समय में किया। कबीर ने भी यह कार्य अपने ढंग से किया, किंतु आचार्य शुक्ल का कहना है कि कबीर की वाणी हिंदू और मुसलमानों के हृदयों को भेदभाव से पूरी तरह रहित नहीं कर सकी। जरूरत संवेदनात्मक आधार पर रागात्मक भूमिका पर दोनों को एक दूसरे के निकट डालने की थी। वे कहते हैं, जिस प्रकार दूसरी जाति का नियामत वाले के हृदय है, उसी प्रकार हमारे भी है। जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम की तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी प्रिय का वियोग जैसे दूसरे को व्याकुल करता है, वैसे ही हमें भी। माता का जो हृदय दूसरे के यहाँ है, वही हमारे यहाँ भी। जिन बातों से दूसरों को सुख दुख होता है, उन्हीं बातों से हमें भी। इस तथ्य का प्रत्यक्षीकरण कुतुबन जायसी आदि प्रेम कहानी के कवियों द्वारा हुआ। अपनी कहानियों द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर प्रभाव दिखाई देता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदय हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, वह जायसी द्वारा पूरी हुई। वहीं पृष्ठ 2। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने जायसी को कबीर का पूरक माना है। शुक्ल जी का इतना लंबा उद्धरण भी हमने इसी कारण दिया है ताकि उसके माध्यम से जायसी अपने मूलवर्ती मानसिकता के साथ प्रथमतः पहचाने जा सके। दूसरे, आचार्य शुक्ल पर लगाए गए संकुचित सांप्रदायिकता तथा ब्राह्मणवाद जैसे मिथ्या आरोपों की असलियत भी सामने आ सके। चिंतन तथा विवेचना की जो जमीन यहाँ है, जाहिर है कि वह आचार्य शुक्ल की अपनी प्रामाणिक पहचान को उजागर करती है, उनकी प्रशस्त मानसिकता का ही आख्यान करती है। बात प्रेम गाथाओं की उठ गई है और इस सिलसिले में जायसी के पद्मावत की चर्चा का यहाँ केंद्रीय हो जाना स्वाभाविक है। पद्मावत एक प्रेमाख्यान है और एक सूफी कवि के द्वारा लिखा गया है। जाहिर है कि जिस इश्क हकीकी का जिक्र आचार्य शुक्ल ने सूफियों के प्रसंग में किया है, उसकी स्थिति उसमें होगी। जायसी ने एक भी मौका नहीं छोड़ा और जहाँ भी वे अपनी प्रेम कथा की आध्यात्मिक व्यंजना कर सकते थे, उन्होंने किया है। बहुत से लोगों के लिए इन आध्यात्मिक व्यंजनाओं का विशेष महत्व है, कारण तभी जायसी को रहस्यवादी सूफी या भक्ति मार्गी कवि सिद्ध किया जा सकता है। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जायसी को भक्त कवि मानते ही नहीं, महज प्रेमाख्यान का रचयिता ही मानते हैं। हम यहाँ इस विवाद में नहीं उलझना चाहते, गो कि हमारे लिए भी जायसी का भक्त वाला रहस्यवादी या सूफी रंग वाला रूप बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम भी चाहते हैं कि सूर की भांति आध्यात्मिक संदर्भों को हटाकर महज प्रेम की मानवीय तथा लौकिक प्रेम की कविता के रूप में जायसी की रचना को परखा जाए। और जब हम इस रूप में पद्मावत की प्रेम कथा को देखते हैं, तो पाते हैं कि जायसी ने प्रेम की पीर को तमाम सारी लीक पीटने के बावजूद मानवीय तथा लौकिक भूमि पर भी बड़ी सहृदयता तथा बड़ी भावुकता के साथ प्रयुक्त किया है। इश्क हकीकी की बात जाने भी दें तो लौकिक तथा मानवीय भूमि पर भी जायसी द्वारा चित्रित प्रेम किसी प्रकार के इश्क हकीकी से कम नहीं है। वह यहाँ भी प्रशांत, गंभीर, मन को भीतर तक एक शीतल करने वाला, आदमी को कुंदन की तरह निखार कर पेश करने वाला, सुख दुख में सम तथा आत्मा की भीतरी गहराइयों से उपजा निष्कलुष और अकुंठित प्रेम है। मतलब जैसे कि यहाँ भी प्रेम कोई शौक या वस्तु नहीं है, मन बहलाने की चीज नहीं है, और गो की सूर के प्रेम की भांति वह लंबे साहचर्य से उपजा न होकर भारतीय प्रेम कथाओं तथा कुछ भारतीय प्रेम कथाओं जैसे गुण श्रवण चित्र दर्शन आज से उपजा तात्कालिक प्रेम है। फिर भी जायसी के भारतीय संस्कारों ने उसे एकांतिक नहीं होने दिया है और वह भारत की प्रेम गाथाओं वाले प्रेम की तरह लोक पक्ष से शून्य भी नहीं होने पाया है। यह जायसी के प्रेम दर्शन की अपनी मौलिक उपलब्धि है। उसकी तीव्रता तथा उसका आवेग भारत की प्रेम कथाओं जैसा ही है, परंतु भारतीय कहानियों के तत्व तो उसमें गुणात्मक रूप से इजाफा किया है और उसे जीवन की नाना दशाओं के बीच से गुजारा और निखारा है। जैसी प्रेम के गूढ़ तत्व को समझते थे, उसके जीवन व्यापी प्रभाव से परिचित थे, प्रेम उनके लिए क्या था यह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट हुआ है। प्रीति बेली जिन अरुझे कोई, अरुझे मुए न छूटे सोई, प्रीति बेली ऐसे तन डाढ़ा, पलुहत सुख बाढ़त दुख बाढ़ा, प्रीति अकेली बेली चढ़ी छावा, दूसरी बेली न संचरई पावा। रत्नसेन जो पद्मावत में एक प्रेमी साधक के रूप में चित्रित हुआ है, प्रेम की इस बेल में उलझता है और उपर्युक्त पंक्तियों में कही गई एक एक बात का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जैसा कि आचार्य शुक्ल ने प्रतिपादित किया है, जायसी ने अपने प्रेम चित्रण में फारसी तथा भारतीय प्रभाव दोनों का अच्छा मिश्रण किया है और यह सुविधा उन्हें अपनी कथा से भी मिली है। पद्मावत की कथा के स्पष्टतः दो भाग हैं। एक में अर्थात पहले में कथा अधिकांशतः क्या सर्वांशतः कल्पित है और महज लोक में कही जाती रही है। कथा के इस अंश तक ही अपने को सीमित रखकर जैसी फारसी प्रेम पद्धति पर बखूबी निर्वाह कर सकते थे, जिसके अंतर्गत प्रेम का वेग नायक में ही दिखाई पड़ता है और वह प्रेमिका को पाने के लिए भांति भांति की बाधाओं को चीरता और पार करता है। यहाँ प्रेम एकांतिक तथा अपने में ही सिमटा हुआ बन जाता है, वह अपना साध्य स्वयं होता है, किंतु जायसी ने कथा के परवर्ती भाग में इतिहास का आश्रय लिया है और गो की कल्पना यहाँ भी है, परंतु काफी कुछ कथा इतिहासानुमोदित है। कथा के इस अंश में ने पद्मावत में और जो भी रचनात्मक योग दिया हो, कम से कम जायसी की पद्धति में एक गुणात्मक विकास उसके नाते भी आया है। कारण न केवल प्रेम तत्व की व्याप्ति लोक की व्यापक भूमिकाओं की ओर हुई है, वह जीवन की नाना दशाओं तक भी व्याप्त हुआ है। सबसे बड़ी बात जो घटित हुई है वह यह कि प्रेम का वेग नायक तथा नायिका दोनों पक्षों में सम हो गया है। रत्नसेन बंदी होता है तो उसे मुक्त कराने के लिए पद्मिनी की सक्रियता भी दिखाई गई है, तथा सक्रियता ही नहीं वह स्वयं संकटों से जूझती हुई भी सामने आई है। यहाँ प्रेम की व्याप्ति युद्ध क्षेत्र तक है और युद्ध क्षेत्र तक ही नहीं, पति के साथ एक ही चिता पर बैठकर भस्म हो जाने तक है। एक और विशेषता जिसकी ओर संकेत करना लाजिमी है वह यह है कि यह प्रेम दाम्पत्य जीवन में भी अपना प्रसार करता है और नागमती तथा पद्मावती दोनों के माध्यम से उसे ऊंचाई प्रदान की गई है। दाम्पत्य प्रेम के चित्र श्रृंगारी कवियों ने प्रायः कम ही दिए हैं और जायसी चूंकि कवि न होकर प्रबंधात्मक प्रतिभा के संत कवि हैं, अतएव दाम्पत्य जीवन में प्रेम की व्याप्ति दिखाकर दाम्पत्य जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच भी उसे पूरी गहराई में उभार कर उन्होंने न केवल प्रेम के बारे में समस्त प्रकार की सतही तथा एकांगी धारणाओं का तिरस्कार किया है, नारी के व्यक्तित्व तथा अस्मिता को भी दीप्ति प्रदान की है। आचार्य शुक्ल ने गार्हस्थिक क्षेत्र के भीतर देदीप्यमान इस प्रेम की भूर भूर प्रशंसा की है, जो बिल्कुल सही है। भोग के साथ साथ इस प्रेम में त्याग का भी उतना ही ताप है और बड़े से बड़े बलिदान के लिए भी यहाँ उनके प्रेमी नायक तथा नायिका प्रस्तुत हैं। प्रेम की अनन्यता उसके सात्विकता के ये चित्र जायसी की आध्यात्मिक आस्थाओं के तहत उपजे हैं तो भी वे स्वीकार्य हैं, और यदि वे मात्र लौकिक धरातल तक ही सीमित हैं तो भी स्वागत योग्य हैं। संभव है कि प्रेम के इस प्रकार के चित्रणों में जायसी के भारतीय संस्कार अभिव्यक्त हुए हों, और संभव है कि आज के संदर्भों में वे बहुत प्रगतिशील न लगे, परंतु तत्कालीन संदर्भों में सामाजिक जीवन तथा पारिवारिक जीवन पर पड़ने वाले दबाव, उनमें व्याप्त अराजकता तथा बिखराव तथा हिंदू मुसलमानों के बीच कायम होते हुए सद्भाव आदि को देखते हुए उनका अपना विशेष महत्व है। नागमती पद्मावती का राजा के साथ सती होना, रत्नसेन के प्रति उनके प्रेम की अनन्यता, गार्हस्थिक जीवन में पति के अभाव के फलस्वरूप आ जाने वाली रिक्तता तथा विषाद एवं पत्नी के अनन्य प्रेम की कवि द्वारा प्रशस्ति, ये सारी बातें जो दाम्पत्य प्रेम के महत्व तथा गरिमा को उभारती हैं, जायसी के अपने समय के संदर्भों में और मात्र परकीया प्रेम को गौरवान्वित करने वाले तत्कालीन माहौल में महत्वपूर्ण कही जाएंगी। वे आज भी अपनी सार्थकता को बहुत कुछ बरकरार रखती हैं। इस दृष्टि से नागमती के वियोग का अंश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने भारतीय दाम्पत्य जीवन की गरिमा तथा एक हिंदू गृहिणी के अंतर्मन के सात्विक विरह ताप का ताप अनुभव किया है और उसे भरपूर सराहा है। हमने इस किताब में ही कहीं लिखा है कि श्रृंगार की कसौटी संयोग चित्रण में न मानकर विवेक के चित्रण में माननी चाहिए, और वह भी इस भूमि पर कि कोई कवि विवेक के क्षेत्र में पूरी गरिमा तथा गंभीरता के साथ कितना टिक पाता है। इस दृश्य से ही सूर ही नहीं जायसी भी इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं, क्योंकि जायसी के यहाँ भी संयोग कम वियोग का ही अधिक प्रसार है तथा गहराई भी वहाँ संयोग से ज्यादा है। रत्नसेन के चले जाने पर नागमती का वियोग तो काव्य की दृष्टि से अति उत्तम है ही, रत्नसेन के बंदी होने पर पद्मावती की विकलता, उसका गोरा बादल से जाकर मंत्रणा करना तथा रत्नसेन की मृत्यु पर दोनों रानियों का शांत गंभीर रूप, सब इस दृश्य से जायसी के वियोग चित्रण को उत्तम बनाते हैं, उसे एक विशेष गरिमा प्रदान करते हैं। इस बिंदु पर हम कुछ चर्चा नागमती वियोग की ही करना चाहेंगे। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य में अद्वितीय कहा है। यह सही है कि यह वियोग वर्णन अधिकतर परंपरायुक्त शैली में ही हुआ है, अर्थात द्वारमासे के रूप में। किंतु बावजूद परंपरा की इस लीख पर चलने के विरहिणी के हृदयगत भावों की बड़ी कोमल तथा मार्मिक वेदना यहाँ हुई है। जायसी ने अपना अधिकतर ध्यान मन की वृत्तियों को, मन के अवसाद तथा क्लेश को सामने लाने में दिया है। अतिशयोक्तियों से बचते हुए गो की पूरी तरह बच नहीं सके हैं। उन्होंने प्रयास यही किया है कि नागमती के अंतर्मन के उद्वेग और तड़प को ही प्रत्यक्ष करें, और इस कार्य में वे दूर तक सफल हुए हैं। विरह की स्थिति में व्यक्ति की चित्त वृत्तियों का विस्तार हो जाता है, अपने से बाहर निकलकर व्यक्ति शेष संसार को भी देखने लगता है। जायसी ने नागमती के विवेक वर्णन में उसके हृदय के इस विस्तार का भी चित्र दिया है। नागमती पशु पक्षियों से ही नहीं वनस्पतियों से भी अपने आंतरिक क्लेश का कथन करती है तथा उनसे सहानुभूत तथा सहायता की अपेक्षा करती है। कालिदास से लेकर आगे तक विरह वर्णनों में यह परंपरा चली है और जायसी ने खूबी के साथ उसका अनुसरण किया है। विरहिणी की मनोदशा की शास्त्रीय भूमिकाओं में हम नहीं जाना चाहते, किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि जायसी ने बड़ी गहराई में जाकर प्रिय वियोग से प्रताड़ित तथा आहत नारी मन का साक्षात्कार हमें कराया है। यह वह स्थिति है जहाँ नारी को अपने प्रिय का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भूलता और प्रिय के शुभ के लिए, उसकी एक झलक के लिए, उसके सामीप्य को पाने के लिए वह अपने प्राण तक निछावर करने को तत्पर रहती है। प्रेम की अनन्यता तथा निष्ठा की बात जाने भी दें तो नागमती के वियोग वर्णन में ऐसे न जाने कितने स्थल हैं जो दाम्पत्य प्रेम को उसकी समूची गरिमा तथा मर्यादा में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण देकर हम विस्तार नहीं करना चाहते, कारण वे लोकप्रिय और सर्वविदित हैं। हम यहाँ जायसी की उस सहृदयता को जरूर रेखांकित करना चाहते हैं, जिसका प्रतिफल यह हृदय ग्राही वियोग वर्णन है और जिसकी सराहना आचार्य शुक्ल ने इस नाते विशेष रूप से की है कि उसमें हिंदू गृहिणी का बड़ा ही आदर्श चित्र उभरा है। पातिव्रत धर्म की बड़ी गरिमामय व्यंजना हुई है। मर्यादावादी आचार्य शुक्ल का ऐसा सोचना लाजिमी है और परंपरित मानसिकता भी हमें ऐसा सोचने को विवश करती है, जिससे जायसी मुक्त नहीं थे वरन मुसलमान होने के नाते और हिंदू घरों की कहानियां लिखने के नाते अपने समय और अपने लक्ष्य के संदर्भों में विशेष सजग भी थे। पद्मावती को जिस प्रकार ईश्वर का पर्याय मानकर कथा में पेश किया गया है, गो की सब जगह ऐसा संभव नहीं हो सका है, उसे देखते हुए भी रत्नसेन का नागमती को छोड़कर पद्मावती की तलाश में जाना औचित्य रख सकता है और नागमती के वियोग तथा उसके सारे पातिव्रत्य तथा उसकी सराहना का एक आधार बन सकता है। फिर भी यहाँ हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भारतीय परंपरा में दाम्पत्य प्रेम को टिकाऊ बनाए रखने तथा उसे निरंतर गरिमा देते रहने, तमाम सारे त्याग और बलिदान, तमाम सारी अनन्यता और निष्ठा से उसे सींचने तथा मजबूत करने का ठेका पुरुष वर्ग ने स्त्रियों को ही दे रखा है। वे सीता हो, यशोधरा हो, उर्मिला हो, नागमती हो या कोई और, यह परंपरा आधुनिक युग में भी बराबर चलती आ रही है और अपने को महा आधुनिक कहने वाले रचनाकार तक की आधुनिकता से मुक्त नहीं है। कामायनी की श्रद्धा स्कंद गुप्त की देवसेना उदाहरण है और जिन्हें हमने महा आधुनिक कहकर संकेतित किया है, वे अज्ञेय भी देखिए नदी के द्वीप के नारी पात्रों को इस परंपरित मानसिकता से मुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में जायसी से विपरीत की आकांक्षा करना या नारी पुरुष की पारस्परिक निष्ठा को रेखांकित करना, अर्थात पुरुष से भी वैसी ही अपेक्षा करने की बात को सामने लाना अतिरिक्त आग्रह होगा। अतएव सब कुछ यहीं छोड़कर और चर्चा को यहीं तक सीमित कर हम यहाँ इतना ही कहना चाहेंगे कि जायसी ने इस प्रसंग में जो कुछ कहा है वे उस समय को देखते हुए वैसा ही कह और प्रस्तुत कर सकते थे। वास्तव में जिसे पातिव्रत्य कहा गया है और जिसकी हमारे यहाँ नारी से ही विशेष अपेक्षा की गई है, उसे जायसी उस मानसिकता के तहत बड़ी गरिमा से उभार सके हैं। उनकी सहृदयता को हम इस कारण विशेष मानते हैं कि उन्होंने नागमती की साधना का सुखमय परिणत भी दिखाई है, जबकि रत्नसेन पुनः चित्तौड़ आकर उससे मिलता है और उसे मना समझाकर उसकी आकांक्षाओं को फिर से हरा कर देता है। वह नागमती से अपने प्रेम को की साखी भी देता है और आदर्श हिंदू गृहिणी या आदर्श भारतीय नारी के नाते नागमती उसकी सारी बातें मानकर उससे पहले जैसा ही जुड़ जाती है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जायसी इस प्रसंग में दूसरे पक्ष को एकदम भूले नहीं है। माननीय नारी का मान उन्होंने प्रिय के द्वारा तोड़वाया भी है। बहरहाल जायसी ने नागमती के पातिव्रत्य को बड़ी ऊंचाई के साथ इस वियोग वर्णन में प्रस्तुत किया है। अनेक स्थलों पर वे बहुत अधिक भावुक हो उठे हैं। गिरि समुद्र सच मेघ द्रव्य सही न सकहीं वह आग, मुहम्मद सती सराहिये जरे जो अस्पियु लाग। पतिव्रता सती के बारे में मुसलमान कवि जायसी की यह उक्ति यदि हिंदू मनो को अभिभूत करती है तो स्वाभाविक ही है। दीगर तमाम संदर्भों को हटाकर यदि हम नागमती के वीरह वर्णन को उसके प्रकृत रूप में लेते हैं तो सचमुच जायसी के भाव कवि हृदय का बड़ा मनोरम परिचय में होता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि नागमती यहाँ अपना समस्त रानीपन भूलकर एक साधारण विरहिणी स्त्री के समान अपनी व्यथा का निवेदन करती दिखाई पड़ती है और सचमुच ऐसे स्थल हृदय ग्राही है। जायसी की ग्रामीण दृष्टि ने बारह मासे के परंपरित रूप में भी बड़ी ताजगी ला दी है। उन्होंने प्रकृति तथा सामाजिक जीवन के निरीक्षण के क्रम में अपने को एकदम उन्हीं वर्णनों तक सीमित नहीं रखा जो प्रायः बारह मासा में मिलते चले आ रहे हैं। कहीं कहीं उनका निरीक्षण लोक जीवन की बड़ी यथार्थ झांकियों को सामने लाया है। लोक जीवन के हर्ष उल्लास अवसाद तथा विषाद के द्वारा कि उनके द्वारा दिए गए अनेक चित्र न केवल अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं, उनकी पैनी दृष्टि तथा संवेदनशील हृदय का अनोखा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। एक बहुत लोकप्रिय तथा प्रायः उद्धृत किया जाने वाला नागमती का कथन है, तपै लागी अब जेठ असाढ़ी मोहि पियु बिन छाजन भई गाढ़ी, तन तिनौर भा झूरों खरी भई बरखा दुख आगर जरी, बंध नाही औ कंध न कोई बात न आव कहो के रोई, साथ नाही जग बात को पूछा बिनु जीव फिरे मन मुंज तन छूछा, भई दुल्हेली टेक बिहुनी थांभ नाही उठ सकई न थूनी, बरसे मेह चुवही नय नाहा छपर छपर होई रही बिन नाहा, कोरों कहां ठाठ नव साजा तुम बिन कंतन छाजा निछाजा। सच है कि यह किसी रानी का अपनी दीन दशा का वर्णन नहीं है। चूंकि जायसी प्रबंधकार कवि हैं और प्रबंधकार कवि के लिए जरूरी है कि वह अपनी कथा के मार्मिक स्थलों को पहचाने, जायसी इस पहचान में दूर तक सफल हुए हैं। उन्होंने पद्मावत की कथा यूं ही नहीं कही है, काफी सलीके के साथ कही है और कथा की मर्मस्पर्शता बढ़ाने के लिए यत्र तत्र अपनी कल्पना का सुंदर प्रयोग किया है। कथा यद्यपि प्रेम कथा है, फिर भी जैसा कि हम इंगित कर चुके हैं, जीवन की नाना दशाओं तक उसका विस्तार है। कथा में श्रृंगार रस प्रधान होने के बावजूद दूसरे रस भी यथावसर अपनी सशक्त अभिव्यंजना करते हैं। अवधि भाषा की अपनी ठेठ ग्रामीण मिठास ने इन प्रसंगों को और भी मर्मस्पर्शी बना दिया है। हम केवल एक प्रसंग को उद्धृत करना चाहेंगे और वह बादल के युद्ध गमन का प्रसंग है। बादल का गौना होकर ही आया है, नवागता पत्नी पद संपर्क से भी रहित है। बादल की माता बादल को वात्सल्य से अभिभूत होकर समझाती है, बादल केर जसो वे मावा आई गहस बादल कर पाया, बादल राय मोर तुई बारा का जानस कस होई जुझारा, बादशाह पुहमी पति राजा सन्मुख होई न हमी रही छाजा, जहां दलपति दली मरही तहां तोर का काज आज गवन तोर आवे बैठ मान सुखराज। बादल की नवागता पत्नी की स्थित को जायसी इन शब्दों में उभारा है, मान गवन सो घूंघट काढ़ी बिनवय आई बार भई ठाढ़ी, तीखे हेर चीर गई ओढ़ा कंतन हेर कीन जीव पोढ़ा, तब धनी बिहसी कीन संग दीठी बादल ओहि दीन फिर पीठी, मुख फिराई मन अपने रीसा चलत न तिरिया कर मुख दीसा, रहो लजाई तो प्यू चले गहो तो कह मोहि डीठ, ठाढ़ी तेवानी की का करो दुभर दुआ बैठ, लाज किए जो प्यू नहीं पावो तजव लाज कर जोरी मनावो, करी हठ कंत जाई जही लाजा घूंघुट लाज आव कहीं काजा, तब धनी बिहसी कहा गई फेटा नारी जो बिनवय कंत न मेटा, आज गवन हवन आई नाहा तुम न कंत गवन रन माहा, गवन आव धन मिल के ताई कौन गवन जो बिसुर साई, धनी न नयन भरी देखा पीऊ प्यु न मिला धनी सौ भरी जीव, जह अस आस भरा है केवा भौर न तजई बास रस लेवा, पायन धरा लिलाट धनी विनय सुनह हो राय अलक परी फंदवार होई कैसे तजय न पाए। बादल माता और पत्नी को प्रबोधता हुआ युद्ध के लिए प्रयाण करता है और इस क्षेत्र में मारा जाता है। सारा प्रसंग भाव गर्भित है, भावुकता से पूर्ण है, परंतु कथा को देखते हुए तथा जायसी की सहृदयता से जुड़कर प्रभाव डालता है और कथा को व्यापक बनाता है। युद्ध क्षेत्र में शौर्य के प्रसंगों में भी जायसी तल्लीन हुए हैं, विशेषतः गोरा बादल के शौर्य की सराहना उन्होंने बड़े खुले मन से की है और अलाउद्दीन के साथ युद्ध के प्रसंग में गोरा के शौर्य पर तो वे अभिभूत हो उठते हैं। यह वह प्रसंग है जहां जायसी की सेक्युलर मानसिकता से हमारा पुनः साक्षात्कार होता है। कथा के हिंदू मुसलमान चरित्रों को उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पेश किया है। हिंदुओं के लोक विश्वासों, उनकी रीतियों तथा आचार विचारों, उनकी धार्मिक आध्यात्मिक आस्थाओं को उन्होंने विशद रूप में सहानुभूतपूर्वक और भरपूर संवेदना के साथ चित्रित किया है। नागमती पद्मावती के रत्नसेन की मृत्यु के उपरांत उसके साथ सती होने के प्रसंग की को जायसी ने तत्कालीन लोक मान्यताओं तथा आस्थाओं के तहत बड़े भव्य रूप में प्रस्तुत किया है तथा अलाउद्दीन को इतिहास के सत्य की रक्षा करते हुए चित्तौड़ पर विजयी जरूर प्रदर्शित किया है, किंतु कहा है कि चित्तौड़ उसे मिला जरूर, किंतु वह जो चाहता था वह उसे नहीं मिल सका। उसकी जगह मिली मुट्ठी भर धूल, जो उसकी या उस जैसे लोगों की औकात थी। शांत रस का यह संदर्भ भी अपने में मार्मिक है, करुणा के मिश्रण ने जिसे और भी गाढ़ा कर दिया है। सर रचिदान पुण्य बहुकीन हा, सात बार फिर भांवर दिन हा, जो एक भांवरी भई बियाही, अब दूसरे होई गोहन जाही, जियत कंत तुम हम गर लाई, मुए कंठ नहीं छोड़ही साई, औ जो गांठ कंत तुम जोरी, आदि अंत लही जाई न छोरी, यह जग कहा काह जो अच्छा ही न आथी, हम तुम नाह दूहू जग साथी, ले सर ऊपर खाट बिछाई, पौड़ी दुआ कंत कर लाई, लागी कंठ आगी दे होरी, छार भई जरी अंगन मोरी, वह सह गमन भई जब जाई, बाद साह गढ़ छेका आई, तब लगी सो अवसर हुई बीता, भय अलोप राम औ सीता, आई साह जब सुना अखारा, होइगा रात दिवस उजियारा, छार उठाई लीन एक मुठी, दिन उठाई पृथ्वी जूठी, जब लही ऊपर छार न पड़े, तो लही यह तिसना नहीं मरे, जवहर भय सब स्त्री पुरुष भय संग्राम, बाद साह गढ़ चूरा चितौर भाई सलाम। कुछ हेर फेर के साथ चित्तौड़ विजय की यही कथा इतिहास में भी वर्णित है, परंतु जायसी के हाथों में उसे जो मानवीय संस्पर्श मिला है वह इतिहास में दुर्लभ है। जायसी निर्विवाद रूप से बड़ी संवेदनशील प्रतिभा के कवि हैं और इस कथन के प्रमाण में प्रसंग पर प्रसंग उद्धृत किए जा सकते हैं। यह तो जायसी और पद्मावत की चर्चा के ढेरों मुद्दे हैं, पर हम अब केवल एक मुद्दे को ही रेखांकित करते हुए अपनी चर्चा का समापन करना चाहेंगे। इस मुद्दे का संबंध जायसी द्वारा चित्रित अवध प्रदेश के लोक जीवन से है, जिसमें तुलसीदास के बाद निर्विवाद रूप से वे अप्रतिम हैं। जायसी अवध प्रदेश के कवि हैं और अवधी भाषा पर उनका सहज अधिकार है। यह भाषा भावानुरूप कितनी मीठी और कितनी रुक्ष है, जायसी इसे अच्छी तरह पहचानते हैं। अवध का लोक जीवन भी कहां मृद और कहां कठोर है, जायसी इसके भी खरे पारखी हैं। वे अवध प्रदेश की धरती से अपने लंबे साहचर्य के नाते उसे एक एक रग रेशे से भलीभांति परिचित हैं। वे मूलतः एक ग्रामीण कवि हैं और अपनी ग्रामीण दृष्टि से ही उन्होंने रत्नसेन, नागमती, पद्मावती, अलाउद्दीन तथा उसके साथ जुड़े सारे आख्यान को देखा है। उसकी सारी कल्पना, उसका सारा निरीक्षण, वह जीवन का हो या प्रकृति का, मनुष्य से संबंधित हो या मानवेतर हो, उसकी निपट ग्रामीण दृष्टि का ही साक्ष्य देता है। उनकी भाषा ही नहीं, उनके उपमान, कथा कहने की उनकी शैली, पात्रों की मनोवृत्तियों को थाहने पहचानने का उनका तरीका, सब कुछ उनके ठेठ ग्रामीण अंदाज को ही सूचित करता है। वे बहुत ही नहीं, काफी घूमे फिरे व्यक्ति भी थे और जिस जनता से उनका निरंतर साबका पड़ता रहा होगा, वह भी राजमहलों की तथाकथित जनता न होकर साधारण जनता ही रही होगी। कारण उन्हें लोक चित्त की जो इतनी खरी पहचान है, वह साधारण जनता के साथ उनके नितांत आत्मीय तथा घनिष्ठ संबंध का ही प्रतिफल हो सकती है। अन्य कहीं से जायसी उसे नहीं पा सकते थे। लोक जीवन की गहराइयों में जायसी की यह पैठ ही कवि के रूप में उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनकर सामने आई है। पद्मावत भले ही राजमहलों में बसने वालों की प्रेम कथा हो, जायसी के यहाँ उसका ट्रीटमेंट विशुद्ध लोक जीवन से पाए अनुभवों से जुड़कर हुआ है। तभी तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वियोग प्रसंग में नागमती अपना रानीपन भूल जाती है। वस्तुतः यह जायसी हैं जो उसके रानीपन को भूल जाते हैं और अपने देखे हुए और भोगे हुए को सामने सजीव करते हैं। अवध की प्रकृति अपनी संपूर्ण सुषमा के साथ पद्मावत में मूर्त है। नागमती के वियोग वर्णन में उसका घनीभूत रूप भर कर सामने आया है। गो की अन्य प्रसंगों में भी वह हमेशा विद्यमान है। अवध की एक एक वनस्पति नहीं, पशु पक्षी भी वहाँ मौजूद हैं। वहाँ के फल फूल, वहाँ के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अनाज, उनके दैनंदिन जीवन में काम आने वाली एक एक चीज, एक एक औजार, विशेषतः कृषि के औजार, सब जायसी के पद्मावत में है। और यही नहीं कि उनके बस नाम गिना दिए गए हैं, जायसी उनसे भीतर तक परिचित हैं। कौन पक्षी कब बोलता है, कैसे बोलता है, उसकी बोली मीठी है अथवा रूखी, जायसी सब जानते हैं। अवध के तीर्थ त्योहार, खेल कूद, उत्सव पर्व, वहाँ के निवासियों के सुख दुख, उनके कष्ट क्लेश,